ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न है आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर है उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। बच्चे समझे सारी बातें? सर्विस का शौक रखना है, विशाल बुद्धि बनना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है, उससे सेवा नहीं करनी है जब तक बाप फाइनल ना करे, निकाल के बाप से श्रीमत लेनी है, फिर सेवा करेंगे। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। इसलिए तो कहा किसी दिन भट्टी करो, कंटिन्यूअस मुरली सुनो उस दिन की अखंड मुरली के ज्ञान के भट्टी में अपने को तपाओ, फिर मैल साफ होगी। समय लगेगा मैल साफ होने में, तपाना तो चाहिए ना बच्चे, तुम तपाना नहीं चाहते और चाहते हो मैल साफ हो जाए, कैसे होगी? पॉसिबल है? समझ की बातें हैं ना, बच्चे समझते नहीं। दूसरा प्रश्न, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पाप बाप की आज्ञा न मानना, सबसे बड़ा पाप है। तुमने पुण्य कितने किए मुझे मत सुना, 10 मुरली सुनी, 8 घंटा योग किया, अमृत वेला किया, नमाज शाम किया, बाप की कौन कौन सी बात तोड़ी जरा बताओ, कौन कौन सी श्रीमत नहीं मानी जरा बताओ, सबसे बड़ा महापाप है। ज्ञात है, पता है कुछ कि तुम कितने महापाप कर रहे हो? चलो बाप की आज्ञा नहीं मानी वो बात अलग है, शायद तुम्हें आज्ञा मिली नहीं, तुम तक पहुंची नहीं, पर अपने मन से करना भी तो मनमत है ना, तो वो कितने पाप तुम करते हो? अपने मन से कितनी बार क्या क्या करते हो? अपने मन के हिसाब से खाओगे, सबसे पहले तो अपने मन के हिसाब से उठोगे, नहाओगे, धोओगे, खाओगे, पियोगे, मौज करोगे, अपने मन के हिसाब से सब श्रीमत अनुसार किया है कब? बाप ने तो उठने की सोने की भी श्रीमत दी है, जागने सोने की, खाने पीने की भी श्रीमत दी है, कब किया है बाप की श्रीमत अनुसार? तुम वही करते हो जो तुम्हारे मन में माया देती है, माया की मत पर ही चलते हो। आया मन में, गया दुकान में, ऐसी हालत है तुम्हारी, और क्या है बच्चे? बाप की आज्ञा कब मानी है तुमने? तुम हमेशा अपनी आज्ञा पर बाप को चलाने की कोशिश करते हो, ऐसे बच्चे हो निराकार को भी चलाओगे कंप्लेन करके, आकार को भी चलाओगे, और साकार अगर हाथ में मिले तो उसे भी आज्ञा देने की चेष्टा करोगे। ऐसे हो तुम, मैल तो इतना भरा हुआ है कि बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, और आज्ञा दे रहे। क्या मूर्ख ज्ञानी है ना, कुछ अकल है, कुछ समझ है? समझदार बनो, समझ की बात है। अपने आप को चेक करो, बाप की आज्ञा कितना मानते हो? अपने आप को चेक करो, बाप की श्रीमत को कितना पालन करते हो? अपने आप को चेक करो, हर आज्ञा हर श्रीमत। यज्ञ में तुम किस लिए आए हो? आज्ञा लेने के लिए या देने के लिए? श्रीमत पर चलने के लिए या अपने मनमत पर किसी और को चलाने के लिए आए हो? किस लिए आए हो अपने से पूछो। बहुत बच्चे हैं, घड़ी घड़ी कहते रहेंगे, आदि से जन्मे हैं ऐसे कपूत बच्चे, आदि से है, उन्हें पता ही नहीं किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पता ही नहीं है। बस जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसी हालत है उनकी। समझ है बच्चे, अपने को चेक करो, चुप रहना सीखो, शांत बैठना सीखो। समझ की बातें। आज भी देखो, आदि से लेकर यज्ञ किसने चलाया? शिव बाप ने चलाया या बच्चों ने चलाया? बाप ही पूछता है यज्ञ किसने चलाया 36 से। तुम कहोगे मूर्ख, करण करावन हार बाप है, पर करता तुम आगे हो, तुम्हें करना है ना, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये करना है वो करना है, कौन कर रहा है ये सब? मुझे पूछो आज, देखो कितनों को निकाल देता हूँ यज्ञ से बाहर, पूछो तो सही, कौन लायक है कौन नहीं है? पूछते नहीं। एक दिन समय मेरे हाथ में डंडा देगा, संभल कर रहना, डंडा आना निश्चित है समय का। बच्चे, बाप की आज्ञा पर चलना सीखो। बाप को कभी कारण नहीं देना होता। बाप ने किसी बच्चे को कहा आज अभी इसी घड़ी नौकरी छोड़ो, जेल में भी डाल दिया गया तो भी मंजूर है, छोड़नी है। किसी बच्चे को कहा बिजनेस बंद करो, करना है। किसी को कहा आज इसी घड़ी समर्पण, होना है। तन मन धन सहित होना है। बाप की आज्ञा, बाप की आज्ञा होती है, ध्यान में रखना बच्चे। सूरज चांद में भी हिम्मत नहीं है आज्ञा तोड़ने की, संभल कर रहना। और तुम तुच्छ मनुष्य, समझ में नहीं आता तुम्हें कौन कहता है क्या कहता है? मुरली में हैसियत है तुम्हारी? समझ की बात है, समझदार बनो, अपने को श्रेष्ठ समझते हो इसलिए श्रीमत तोड़ते हो। अपने जरा औकात देखो, कहाँ थे, बाप ने क्या बनाया, और अपने आप को क्या समझते हो? कहाँ से उठा के बाप ने क्या बनाया? अकल है, गोबर में सड़ रहे थे दुनिया के, बाप ने उठाया है। होशियारी मत करो, समझदार बनो, श्रीमत पर चलना सीखो। बहुत बच्चों को आता ही नहीं है, नहीं उसको क्या होता है, तू मुझे मिल अंत में, मैं तुझे दिखाता हूं उसको क्या होता है। समझ है, ड्रामा ने रोक के रखा है मेरा पार्ट, प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, फिर मैं दिखाता हूं उसको क्या होता है। और आज्ञा न मानने वाले बच्चे, एक भी बच्चा रहेगा नहीं यज्ञ में, एक भी, कितने भी साल से ज्ञान में क्यों ना हो, ब्रह्मा बाप के साथ साथ ज्ञान में आए हुए भी क्यों ना हो, एक भी नहीं रखूंगा, मेरे वचन है। श्रीमत पे चलना नहीं होता, और तुझे मैं यज्ञ में रखूं, समझ की बात है। बाप प्यार का सागर है तो मार का महाकाल भी है, ध्यान में रखना बच्चे, जरा लाड़ प्यार में नहीं आना। बाप ने याद प्यार क्या दिया, नमस्ते क्या किया, सिर पे बैठोगे पटक देगा महाकाल बनकर। श्रीमत पर चलना सीखो पूरा पूरा, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और इवन नींद में भी श्रीमत पर रहते हो क्या, चेक करो। अपनी कोई बात मत लाओ बीच में, अपनी कोई बात मत सुनाओ, बाप को कारण नहीं देना होता, ध्यान में रखना बच्चे। मूर्ख बच्चे ही बाप को कारण देते, बाबा पर, लेकिन, अगर, मगर, बाप को समझ के क्या रखा है। बाप का कहना और बच्चे का करना होता है, समझ है। बाप को कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, एक्सप्लेनेशन देने वाले अपने को राइट सिद्ध करने वाले, देखना अंत में इनका हाल क्या होता है, बस देखना। तो वो हमेशा अपने को राइट सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे, माना तू राइट, बाप रॉन्ग, श्रीमत रॉन्ग, हमेशा यही करेंगे। बाप ने कहा ना ये रॉन्ग था, इस प्रकार राइट है, बात खत्म हो गई। आप बाप को दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, आपका दिखाना सिद्ध करता है कि आप राइट थे, ये आप सिद्ध करना चाहते हो। बाप राइट को भी रॉन्ग कह सकता है, बाप है वो, तुम्हें क्या पता है राइट और रॉन्ग, क्या जानते हो राइट और रॉन्ग के बारे में तुम, तुम्हें तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आना नहीं होता, तुम राइट और रॉन्ग की क्या बात करोगे। समझ की बात है बच्चे, पहले श्रीमत पर चलना सीखो। गुरु किया है ना, सदगुरु किया है ना परमात्मा, तो उसकी आज्ञा पर चलते हो, या मन में जो आता है वो करते हो। समझ की बात है, महापाप है ये, बाप की आज्ञा न मानना, महा का भी महापाप है, बाप की श्रीमत को न मानना। समझ की बात है, बाप की पहली आज्ञा क्या है कि बच्चे मुझे निरंतर याद करो, करते हो, खाते पीते उठते बैठते करते हो क्या, श्रीमत पालन होती है क्या? नींद से उठे और याद में बैठे, सोने गए और याद करते करते नींद लग गई, ऐसे कभी हुआ है? भोजन शुरू किया और बाप ने भोजन दिया है तो उसका शुक्रिया अदा किया, हुआ है कभी? समझ की बातें हैं। श्रीमत पर चलना सीखो। पहली आज्ञा है, निरंतर याद करो। जब तुम्हारा कार्य होगा, तुम्हारा पाठ होगा, बाप तुम्हें बुलाएगा। बाकी पाठ नहीं है, कार्य नहीं है, बैठो याद में। पहली श्रीमत है बाप की, निरंतर मुझे याद करो। बात समाप्त हुई। इसी में बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। फिर बच्चे कहते हैं, बाबा इतने साल हो गए, इतनी मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, स्थिति क्यों नहीं बन रही है? याद करते हो। 24 घंटे में से 8 घंटा ही तो कहा है ना कि याद करो, भल चलते फिरते करो, खाते पीते करो, जागते सोते करो, पर करते हो क्या? 8 घंटा बाप को याद, मुश्किल कोई करता है? मुश्किल। अपने ही हिसाब से चलना है और कुछ भी नहीं है। अपने ही हिसाब से जो मन में आए करो, जो मन को लगे करो, बाप के हिसाब से नहीं चलना है। समझ की बातें हैं। बच्चे अपने को होशियार नहीं समझना, वापिस कहता हूं, पहले निरंतर याद करके दिखाओ। निरंतर याद, अखंड। बस हुआ एक दूसरे से बात करना, दुनियावी बात लौकिक हो या अलौकिक, ज्ञान चर्चा हो, सेवाओं की चर्चा हो, बस हो गई। कितना जानोगे परम धाम सूक्ष्मोतन, ये स्थूल वतन, कितना जानोगे? और जानकर पाओगे भी क्या? ज्ञान की चर्चा करके कितनी चर्चा करोगे एक दूसरे की, गुण अवगुण की, क्या पाओगे इससे? कितनी पास्ट लाइफ की चर्चा करोगे, बीती हुई बातों की? और कितनी कलयुगी मौज चाहते हो? याद करना नहीं होता? कितना आनंद लेना है तुम्हें खान पान का, वस्त्रों का, व्यवस्था का, जो जैसा मिला है उसमें याद करना नहीं होता? समझ की बातें बच्चों के लिए। समझदार बनो, याद पर ध्यान दो, दूसरे पर ध्यान है। दूसरा क्या कर रहा है, क्या लेना देना है, दूसरा क्या कर रहा है? तुम अपना देखो, अपने बारे में सोचो। भल लौकिक में कोई भी हो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा, मामा, काका, हर आत्मा का अपना पार्ट है। उसने जो कर्म किए उन्हीं कर्मों का प्रारब्ध वो भोग रहा है, बात खत्म हो गई। तुम उसकी चिंता करके उसके भाग्य की बात बदलने वाली है? समझ है? अपनी चिंता करो, ईश्वरीय चिंतन करो, उस पर अटेंशन दो। बस हुआ दुनियावी कारोबार? समझ की बातें हैं बच्चे। अपने में आओ। ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरों के गुणों की चर्चा चलती है, अवगुणों की चर्चा चलती है, क्या उपयोग है? है तो सब ड्रामा ना, तो ड्रामा की चर्चा क्या करनी बार बार, घड़ी घड़ी? जो हुआ ड्रामा, जो हो रहा है ड्रामा, जो होने वाला है वो भी ड्रामा। बस जो हुआ ड्रामा, उसके आधार से वर्तमान का ड्रामा चल रहा है, वर्तमान के ड्रामा के आधार से भविष्य का ड्रामा बन रहा है। है तो सब ड्रामा, तो जो ड्रामा है उसे क्या सोचना? ये सोचो, बाप की श्रीमत पर कैसे चल सकेंगे, ये सोचो ना, कि दुनियावी बातें बीती सो बिंदी लगा दो और शांत हो जाओ। बाप की आज्ञा है मुझे निरंतर याद करो। बहुत बच्चे हैं, बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, नौकरी धंधा करते हैं, पर निरंतर याद करने की चेष्टा की है कभी क्या? नहीं। मुश्किल याद की है किसी ने ऐसी? बच्चे पहली आज्ञा है निरंतर याद करो। मुरली सुन रहे हो फिर भी बाप की याद कायम रहे। याद नहीं छूटनी चाहिए, याद नहीं टूटनी चाहिए, याद में बैठकर ही मुरली सुननी है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी जो शब्द जाने अंदर जाएंगे, उन्हें क्या देखना है, शब्दों को क्या सुनना है। तुम शब्द सुनते हो मुरली के, बाप सूक्ष्म रूप से ऊर्जा भरता है। तुम्हें ऊर्जा नहीं लेनी, शब्द सुनने हैं कानों से। देह अभिमानी कानों से मुरली सुनेगा, आत्माभिमानी आत्मा से मुरली की बाप की ऊर्जा अपने में भरेगा। तुम कौन हो? कानों से मुरली सुनने वाले देह अभिमानी या फिर आत्माभिमानी? चेक करो अपने को, तुम कौन हो? जिन्होंने आत्मा से मुरली सुनी है, आत्मा से बाप की ऊर्जा मुरली की ऊर्जा अपने में भरी है, वही बनेंगे। कानों से सुनने वाले क्या बनेंगे? इसलिए बाप कहता है अपनी स्थिति में रहो, याद में बैठो। बच्चे याद नहीं करते फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। 63 जन्म विकर्म किए हैं, एक जन्म संगम का है। अभी अभी आए हो ज्ञान में, 9, 10, 20, 30, 40 साल हुए होंगे, पर 2500 साल से विकर्म किए हैं। उनके संस्कार कड़े हैं, उनकी ऊर्जा कड़ी है, इसलिए बाप कहता है चुप रहो और श्रीमत पर चलो। समझ की बातें? समझ में नहीं आता? ये गुरु बड़ा कठिन है। श्रीमत पर चल सकते हो तो ये गुरु करना, वरना इस गुरु से परेशान हो जाओगे। बड़ा कठिन गुरु है ये। पहले जैसा बाप नहीं है, मीठे बच्चे लाडले बच्चे थप्पड़ मार दूंगा, नहीं जमता तो निकलो बाहर, मुझे क्वालिटी चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए हजारों की लाखों की। क्या करना है भीड़ का? कोई मेला लगा है क्या? समझ की बात है, जमता है तो करो नहीं तो निकलो, सीधी बात है। श्रीमत पर चलना आता है तो ठहरो, वरना निकलो। समझ की बात है। आगे से एक बात लिख के रखना, जो भी बच्चे आएंगे गलती से भी एक भी श्रीमत टूटी बाप की, परमानेंट बैन करना है उसे, परमानेंट, ड्रामा के अंत तक। उसका मुख नहीं देखना है मुझे, अंत तक। उसे कहा बाप ने यहां बैठो और बच्चा कहता है नहीं बाबा यहां ठीक हूं, तुरंत बैग देके निकालना है उसी क्षण, और परमानेंट बैन समाप्त पार्ट। पक्के बच्चे एकदम जरा भी इधर उधर ना करने वाले, समझ है? कोई बच्चे वाणी सुनने के लिए घबराते होंगे बाप की, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, वाणी ऐसी रहेगी, इससे भी तेज चलेगी, कड़ी चलेगी, जमता है तो सुनो वरना नहीं सुनो। मेरा ज्ञान है, तुम्हारे हिसाब से नहीं सुनाऊंगा, हिसाब मेरा ही चलेगा, तरीका भी मेरा ही होगा। अब तक सुना नहीं होगा किसी गुरु से, नहीं जमता मत सुनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है सुनने के लिए कि मुरली सुनो ही, हिम्मत लगती है महाकाल की मुरली सुनने के लिए, रुद्र की मुरली सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। घबराने वाले नहीं सुन सकते, कमज़ोर दिल वाले, दिमाग वाले। समझ की बात है, जब तक श्रीमत पर चलने का संस्कार नहीं है तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। लिख के ले लो उससे, पहले श्रीमत पर चलने का संस्कार बनाओ। मनमत को समाप्त करो, परमत तो कब की समाप्त हो चुकी है, मनमत को भी समाप्त करो तब ही तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो है संस्कार, माया कोई ना कोई विकर्म करा ही देगी। इतने सालों की आदत है ऐसे बोलने की, वैसे देखने की, ये सुनने की, ये करने की, वही होगा। बच्चे कोई मामूली बात लगी तुम्हें 63 जन्म के संस्कार मिटाना? कोई खाने की बात है क्या? 63 जन्मों के संस्कार है, एक बार भी यहां मनमत से कुछ किया ना, वापिस वो संस्कार कड़ा हो गया। एक बार भी किया तो श्रीमत एक ही आधार है सारे संस्कारों को समाप्त करने का, एक ही आधार है और कोई आधार नहीं और कोई उपाय नहीं है। समझ की बातें, श्रीमत पर ना चलने वाले उनसे और क्या होगा विकर्मों के अलावा? इसलिए बच्चे चुप रहो और चलते रहो। सबके बस की बात नहीं है बाप के ज्ञान में चलना, साकार में चलना। तो बहुत बच्चों को लगता होगा समर्पित हो जाए। देखो जरा आके, तुम मेरी वाणी से ही समझ जाना यहाँ कायदे कैसे होंगे। पब्लिकली वाणी अगर ऐसी है तो वहां कायदे कैसे होंगे, तुम वाणी से ही समझ जाना। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना समर्पण का। समझ की बातें, समझदार बनना बच्चे, समझदार बनना। श्रीमत पर चलना, मनमत पूरी बंद, पूरी की पूरी बंद। अभी समय बदल चुका है, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, संभल कर रहना। समय बदला है, प्लैनेट्स उल्टे हुए हैं वक्री, तुम अपने सीधे रखना प्लैनेट्स। संभल कर रहना बच्चे, श्रीमत माना श्रीमत, पहली श्रीमत है, निरंतर याद करना है, याद कभी छूटे नहीं, याद कभी टूटे नहीं, भूले नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। इसलिए बैज भी वैसे ही बनवाया है, मैं और मेरा बाबा। लोगो भी वैसे ही बनवाया है, मैं और मेरा बाबा, कि बच्चों को याद रहे। इसी अवस्था में स्थित रहना है, अवस्था ना चेंज हो जाए, ध्यान रखना बच्चे इस बात का पूरा पूरा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अभी छोड़ दिया है ना, बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे बुलावे पर आया हूं ना, तो चलो अभी मेरी श्रीमत पर चल के दिखाओ। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है, कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। मात पिता अक्षर तो जरूर चाहिए, मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा, वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है, यह है गुह्यते गुह्य बात, जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुखवंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। यह बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो, माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं वह यह नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बी के व ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है, सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है, यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और यह यानी ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए, इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियाँ बैठ लिखी है, 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं, नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं हैं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्मस्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला न सके। यह परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है, आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। यह मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। यह तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने लिए। यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। गीत है, वास्तव में धरती यह भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है, और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है, जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता, गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं, इनमें सब लक्की सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, यह यानी ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा, जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, वह बहुत तीखा होता है। उनको ज्ञान लक्की सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई, बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है, सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है, मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। यह गुह्यराज बहुत समझने लायक है, परंतु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा न सके, वह तो जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता, अब पिता सर्वव्यापी है, तो माता कहाँ गई? यह समझने की बात है ना, माता पिता चाहिए ना। माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु यह समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वह तो गॉड फादर हैं। फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम भी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते। बच्चे समझ सकते हैं, आदम भी वास्तव में यह है, बीबी सो आदम है। इनको बीबी आदम दोनों कह देते हैं। वह तो है बाप, यह बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते भी हैं तुम माता पिता, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था और कोई राज्य नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था, मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लॉन्ग लॉन्ग था वह सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझाने की बात। यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाना है और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं। फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री, रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, अंगे अखरे यानि तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते हैं। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वालों के ज़रूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नटशेल में समझ सकते हो। 84 लाख जन्म तो है नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है। 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। उस समय गीत बजा। पाप कपट की छाया पड़ गई है, अब रावण का राज्य है ना। आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामील हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने लिए फिर गाया हुआ है। ज्ञान मान सरोवर उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घास लेट में डाला जाता है। यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कुछ ध्यान में रखना, अखंड ज्ञान चलता रहे तब मैल उतरेगी, वरना मुश्किल है। अखंड मुरली चलती रहे। तुम 23 घंटा 59 मिनट मुरली सुनो और बस 1 मिनट के लिए किसी से प्रत्यक्ष रूप में बात सुनो, फोन पर सुनो या मोबाइल पर कुछ देखो, बस 1 मिनट शून्य पुरुषार्थ। 1 मिनट में मैल उतारना चाहते हो तो 24 घंटा एक ही पुरुषार्थ ज्ञान का, 24 घंटा एक ही प्रकार की ऊर्जा अमृत समान, अमृत से भी ऊंची जब अंदर प्रवेश होगी तो आत्मा बदलना शुरू होगी। उसमें एक बूंद भी, एक मिनट का, एक सेकंड का, दुनियावी बात का गया, उससे भी बदतर बन जाओगे जैसे पहले थे। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, अखंड ज्ञान, अखंड। इसलिए बाप यहाँ अखंड ज्ञान सुनाता है, अखंड। बाप बच्चों के साथ चाय पर बैठे, खाने पर बैठे, ऐसे ही बैठे, अखंड ज्ञान ही चलता रहता है, समझ ही चलती रहती है। इसी से आत्मा परिवर्तन होगी। ऊर्जा दे रहा है बाप, एक मिनट भी कुछ और देखा सुना समाप्त। बदलना चाहते हो तो बस ज्ञान, वो भी अखंड ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। मन को बदलना है, मन में बस मुरली बजती रहे, विचार सागर मंथन चलता रहे। मन में कोई संसार का विचार नहीं करना है, कोई लौकिक अलौकिक पारलौकिक विचार नहीं करना है, बस बाप का ज्ञान मन में, क्या हुआ क्या होगा नहीं, बस ज्ञान का मंथन चलता रहे मुरली में। उसमें भी मुख्य ज्ञान कौन सा है? एक ही, मैं और मेरा बाबा, इतना ही ज्ञान है मुख्य। चलता रहे मन में, मन बदलेगा। बुद्धि से अपने आप को देखो, बाप को देखो, बुद्धि बदलेगी। और मन और बुद्धि जितने तेज गति से बदलते जाएंगे उतने अशुद्ध संस्कार जलते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए तो बाप कहता है सब छोड़ के चलना पड़ेगा इस राह पर, तब बनोगे, वरना मुश्किल है बनना, बेहद मुश्किल है। ऐसे हल्के में नहीं चल सकते बच्चे, अखंड चलेंगे तब चल पाएंगे। ध्यान में रखना, कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं, उस नॉलेज में तत्पर रहना है, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यह पांच विकारों की बीमारी महाभारी है, इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं। यह कब से शुरू होती है? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारा शरीर बीमार है, समझ जाना आत्मा बीमार है। इसलिए उसका परिणाम शरीर पर आया है। शरीर को ठीक करने की चेष्टा कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं भले बीमार हो, बाजू में लगाओ मुरली, 10 सुनो, करो ड्रिल, लेटे हो ना, लेटे लेटे सुनो, लेटे लेटे करो, बुद्धि की ही बात है ना। शरीर बीमार है ना, तो शरीर की कहाँ बात है, हाथ पैर हिलाने की बात कहाँ है। मैं कहता हूँ याद करो, सकाश दो, स्वमान करो। तुम दवाई लेते हो, ये दवाई लू या वो दवाई लू, बाप जो याद की दवाई दे रहा है जिससे अनेक जन्मों की बीमारी समाप्त होती है, वो नहीं खानी है तुम्हें। एलोपैथिक खाना है, होम्योपैथिक खाना है, आयुर्वेदिक खाना है, खाओ खाओ, टेम्पररी शरीर को ठीक करो, करो ठीक। अभी ठीक होगा, कल का क्या, पाप वैसा का वैसा है। जब तक बाप को याद नहीं करोगे, पाप अंदर पड़ा है, वापस बीमारी आएगी। इसलिए बाप कहता है याद करो, बाप को याद को बढ़ाओ। समझ की बातें हैं। सारे बीमारियों का कारण है पाप और निवारण है बाप की याद। बच्चे समझते नहीं, बच्चे सोचते हैं कौन सी दवाई, कौन सा खाना, कौन सा आराम, ये सब बकवास है बच्चे। याद एक ही उपाय है, अंतिम उपाय है। समझ की बातें हैं, ये सभी नहीं समझ पाते कि याद अंतिम उपाय है। दवाई सोचेंगे बीमारी आने के बाद, पहले याद नहीं करेंगे बाप को, पहले दवाई, कौन सी दवाई ले। अरे बच्चे आत्मा में समस्या है, आत्मा को बीमारी लगी है इसलिए शरीर बीमार है, और तुम शरीर को ठीक कर रहे हो। अजीब बात है, आत्मा को ठीक करो, याद के लिए समय निकालो, याद के पीछे दौड़ी लगाओ। तुम्हें बस बता दिया फलानी बीमारी की फलानी दवाई, ये टैबलेट, तुम आ गए उस बिलीफ सिस्टम में, इससे ठीक होगा। याद करके देखो, कभी किया है याद? सिर दर्द हुआ और बाप की याद में बैठे, पेट दर्द हुआ और बाप की याद में बैठे। पेट को दर्द है ना, आत्मा को तो नहीं है ना, तो याद में बैठने में दिक्कत क्या है? मन को तो दर्द नहीं है ना, बुद्धि को तो नहीं है ना, बुखार शरीर को है ना, याद तो मन बुद्धि से करना है ना, अलग क्यों नहीं करते अपने को? सोचो कितना बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तुम, कितना होंगे, कल्पना करो। बच्चे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, याद, और कुछ भी नहीं, बाकी सब टेम्पररी है, उसके पीछे दौड़ो नहीं। याद के पीछे दौड़ी लगाओ, याद का चार्ट बढ़े, 2 घंटा है तो 3 हो, 3 है तो 4 हो, 8 है तो 9 हो, 9 है तो 10 हो, याद का चार्ट बढ़ता रहे। समझ है, बच्चे समझते नहीं। कभी तुमने सोचा 1 मिनट से शुरुआत करते, आज 1 मिनट बाप को याद करेंगे, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, 104 मिनट, कैसे भी करके समय निकालेंगे, तो धीरे धीरे संस्कार बनता है। 1 साल में 360 या 365 मिनट याद कर पाते, माना 1 साल में ही 6 घंटे की याद हो जाती। वापस वहां से बढ़ा रहे हो, कितने साल हो गए ज्ञान में, 12 घंटे ऐसे हो जाते याद के, पर तुमने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। समझ है, कोई बच्चा सोचे आज 5 मिनट करेंगे, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, 12 दिन में 1 घंटा हो जाए, 12 दिन में संस्कार बनेगा, 24 दिनों में 2 घंटे का संस्कार बनेगा। कुछ कल्पना है, बच्चे करते नहीं, करना चाहिए। कुछ तो डिसाइड करो, कहाँ से तो शुरुआत करो। सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और तुम जो कर रहे हो वो किसी को बताना नहीं, अपने साथी सहयोगियों को भी नहीं बताना, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे पास ही रहे। कोई बच्चा मेरे साथ साकार में चलता है तो मुझे भी ना बताए, तुम करते रहो, क्योंकि तुमने इस यूनिवर्स में बोल के दिखाया, किसी को भी माया ने सुन लिया, अभी वो होगा नहीं, इसलिए चुप रहो, अपना अपना प्लान बनाओ और पुरुषार्थ करो। समझ है? किसी ने सोचा होता आज एक मुरली करेंगे, पांच दिन में दूसरी करेंगे, दस दिन में तीसरी करेंगे डेली, पंद्रह दिन में चौथी करेंगे, बीसवें दिन में पांच करेंगे, क्या बड़ी बात है। संस्कार एक साथ नहीं आता। तुमको आज दस के दस करेंगे, आज आठ घंटा योग करेंगे, कल सोलह घंटा सो जाओगे आठ घंटा योग करके, एक साथ कोई बात नहीं होती। अकल होनी चाहिए सब करने की। कोई बच्चा सोचता पहले तीन दिन एक बार ड्रिल करेंगे, अगले तीन दिन में दो बार ड्रिल करेंगे रोज की, अगले तीन दिन में तीन बार करेंगे, अरे एक महीने में दस बार हो जाएंगे ड्रिल। हो गया संस्कार रोज के दस ड्रिल करने का। समझ है? सकाश का भी ऐसे ही है। संस्कार धीरे धीरे बनता है, पर उसको बनाने के लिए घड़ी घड़ी करना पड़ता है। तुम दिन में बस एक बार करोगे, संस्कार नहीं बनेगा, आदत नहीं लगेगी। समझ है? या कभी किसी उत्सव में करोगे, आदत नहीं बनेगी। शराबी किसे कहते हैं? जो रोज बहुत बार शराब पीता है। कभी कभार किसी महोत्सव में उत्सव में शराब पी, वो शराबी नहीं है, उसका संस्कार ही नहीं शराब पीने का। जो दिन भर पिया हुआ रहता है वो है शराबी। उसी प्रकार जो दिन भर मैं और मेरा बाबा ज्ञान का नशा, ड्रिल का नशा, योग का नशा, सकाश का नशा इसमें रहता है, स्वमान का नशा, वो है ज्ञानी, वो है योगी। तुम हो क्या? अपने आप को राजयोगी टाइटल लगाते हो? दिन भर क्या चलता है तुम्हारा? समझ है? समझ की बात। अरे बच्चे पांच मिनट में एक मिनट की ड्रिल भी की तो भी एक घंटे में बारह ड्रिल हो जाएंगे, नौ घंटे में एक सौ आठ हो जाएंगे। ऐसे ही पांच मिनट में एक मिनट भी बाप को याद किया, देखो कितने मिनट होते हैं। पर वो संस्कार बन रहा है। हर पांच मिनट में एक लाइन मुरली की पढ़ी एक मिनट के लिए, संस्कार बनता है ज्ञान का। अगर संस्कार बनाना चाहते हो तो घड़ी घड़ी उस बात को करो। घड़ी घड़ी जिस बात को तुम करोगे उसमें तुम मास्टर बन जाओगे। घड़ी घड़ी, दिन में एक बार नहीं, हर किसी के संस्कार अनुसार, हर आत्मा में एक आंकड़ा है। कौन सा? रिपीटेशन का। उतनी बार वो बात करने के बाद वो उनका संस्कार बनता है। हर आत्मा का एक आंकड़ा है। किसी का पंद्रह बीस बार करने के बाद संस्कार बनेगा, किसी का तीस चालीस, किसी का पचास साठ, किसी का सौ दो सौ। पर जब तक वो संस्कार ना बने तब तक वो करो। तुम शांत स्वरूप रहना चाहते हो पर ये संस्कार है शांत स्वरूप का, ये कब बनेगा? ऐसे ही नॉर्मल कोई परिस्थिति नहीं और तुम कहते हो हम शांत हैं, भेजो किसी को तुम्हें इरिटेट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, गाली देने के लिए, फिर शांत रह के दिखाओ। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटित होंगी, वो जो आंकड़ा है उतनी, और उतनी घटनाओं में अगर तुम शांत रहे, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, तो शांति का संस्कार आएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, उसके बाल बच्चे समाप्त हो जाएंगे। संस्कार का अभ्यास करो, फिर एक दिन में करो या कितने भी दिन में करो। वो गाड़ी सिखाते 21 दिन या एक मास, फोर व्हीलर चलाना। किसी को अगर सीखनी है ना तेजी से, तो वहां से आधा एक घंटा वो सीख के आता है, और घर में 9-10 घंटे प्रैक्टिस करता है, कितना भी पेट्रोल जले डीजल जले, और देखना वो बच्चा 2-3 दिन में गाड़ी सीख जाता है। क्यों? घड़ी घड़ी किया। संस्कार अगर चाहिए तो घड़ी घड़ी करना चाहिए। तीसरे दिन में एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी निकाल देता है। क्यों? घड़ी घड़ी किया, समझ में आई सारी गाड़ी। जो बात आप घड़ी घड़ी करोगे वो संस्कार बनेगा। अभी तुम पर डिपेंड है, पूरे जीवन में एक संस्कार धारण करना है, 10 साल में करना है, 1 साल 1 मास में करना है, 1 हफ्ते में करना है, या 1 दिन में करना है, मर्जी तुम्हारी। सब तुम्हारे हाथ में, सारी शक्ति है आत्मा के अंदर, 1 दिन में भी एक संस्कार धारण कर सकती है। इसी का गायन है, श्री कृष्ण जी ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। क्यों? क्योंकि आत्मा एवर रेडी है सीखने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही तो कला 1 दिन में सीखनी है ना, बस दिन भर वही बात करते रहो, सीख गए संस्कार, 1 दिन में बन गया। अभी इतना समय नहीं बचा, 1 हफ्ता दे, 1 मास दे, साल तो भूल जाओ, भूल ही जाओ साल, इतना समय नहीं बचा। समझ की बात है बच्चे, होना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा बच्चे। रिपीटेशन, ये संस्कार धारण करो, ये संस्कार धारण करो रिपीटेशन का, समझ है। तुम करते नहीं, किसी दिन बैठो और अपने को घड़ी घड़ी याद दिलाओ। बाप ने कहा है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। कम से कम उस समय के लिए तो याद आई आत्मा और बाप, बार बार याद दिलाओ ये महावाक्य। याद दिलाते 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 मन भी मानेगा, हाँ करते, बुद्धि भी मानेगी, हाँ करते, संस्कारों ने भी संस्कार धारण किया, करते, फिर देखो क्या होता है। दूसरे दिन अपने आप मन बुद्धि दौड़ेंगे, दीवार की तरफ देखा बाप दिखा, यहाँ देखा बाप दिखा, आत्मा समझ करो भी, वहाँ देखा बाप दिखा। पर बच्चे रिपीटेडली ये सब करना पड़ेगा, ये कोई मैजिक नहीं होगा, न मैं कोई मैजिक करूँगा, न आकार करेगा न निराकार करेगा, जो करना है वो तुम्हें करना है, मेरा काम है तुम्हें बस गाइड करना, बाकी मैं कभी कुछ करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ, गाइडेंस ही सब कुछ है। इसलिए करके भी मैं अकर्ता हूँ, अकर्ता किस रूप से, मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, मैं अप्रत्यक्ष रूप से करता हूँ। करना तुम्हारा काम है, बार बार करो इसे, बार बार। 8 बार ड्रिल क्यों? बच्चे कभी पूछते बाबा कितनी बार ड्रिल करनी है, मेरा एक ही उत्तर है, जब तक तुम स्वरूप ना बनो तब तक ड्रिल करनी है, जब तक स्वरूप ना बनो सारे, तब तक 5 स्वरूप की ड्रिल करनी है, करो, समझ है बच्चे। ये कोई कितनी बार करनी माना, कोई क्या रेस है क्या, या कोई रोटी खानी है 4 या 2 या 5 या 10-20, समझ है, या कोई आइसक्रीम खानी है, कितनी आइसक्रीम खाए 1 या 2, वो तो खाते नहीं, खाने में बैन है, समझ की बात है। अरे ये संस्कार है, ये तब तक किया जाता है जब तक संस्कार ना बने। कभी कहीं गए हो, डांस क्लास लगाया है, कोई स्टेप तब तक सीखी जाती है जब तक परफेक्ट आती नहीं, सिंगिंग क्लास लगाया है, कोई सुर तब तक गाया जाता है जब तक आता नहीं, फिर अगला सुर देते हैं, खाना बनाने का क्लास लगाया है, कोई व्यंजन तब तक बनाया जाता है जब तक परफेक्ट आता नहीं। समझ है बच्चे? ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो पढ़ाई है, ये तब तक की जाती जब तक स्वरूप नहीं बनते। तुम्हें लगता है 8 बार ड्रिल किए, 15 बार किए, 20 बार किए, पाया क्या? पाया क्या? स्वरूप बने क्या तुम? समझ की बात है, स्वरूप कब बनोगे? स्वरूप बनना है बच्चे। यहां का ज्ञान तब तक उठाया जाता है जब तक स्वरूप ना बने। और एक साथ सब मत करो, धीरे धीरे करो, एक एक का प्लान बनाओ अपना खुद का कि मुरली कितनी बार करनी है जिससे ज्ञान समझ में आएगा, योग कितना समय करना है। बाप ने तो कहा है निरंतर याद करो, पर कितना समय करना है ताकि जमा होगा, दिन भर चलने के लिए शक्ति भी मिलेगी। देखो बच्चे, तुम्हारे पास योग बल होगा तो तुम्हारे आपसी संबंध अच्छे रहते हैं, तुम्हारे पास योग बल होगा तो तुम्हें भोजन ठीक ठाक मिलेगा, समय पर मिलेगा। सारा खेल योग बल का है, बाकी कोई बात नहीं है। योग बल कमाओ, भले एक एक सेकंड कमाओ। नहीं होता किसी को एक मिनट, किसी बच्चे को नींद आ जाती है, हर्जा नहीं, पर एक एक सेकंड कमाओ, जमा तो करो। मैं नहीं कहता 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो। किसी बच्चे का शरीर नहीं बैठ पाता, एक एक सेकंड चलते फिरते, 1 सेकंड रुको, बाप को याद करो, जमा किया, आगे बढ़ो। हर कर्म में 1 सेकंड रुको और जमा करो और योग करना शुरू करोगे। नींद आना स्वाभाविक है क्योंकि माया तुम्हें करने नहीं देगी। ज्यादा समय मत करो, तुम अपना चार्ट बनाओ, अभी 10 सेकंड करेंगे, टिक टिक टिक। देखो उस 10 सेकंड में भी माया तुम्हें सुलाने की चेष्टा करेगी, क्योंकि माया जानती है योग की शक्ति अंदर गई तो मुझे निकलना पड़ेगा। जितना भी सेकंड सेकंड कमाते हो, कमाओ, संस्कार बनाओ। ध्यान में रखना, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है, ज्ञान भी ऐसे उतरता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं, पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वह लोग बतलाते हैं। इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं, कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई, काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा, वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी है, मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा न मानना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। मैं जानता हूँ तुम याद नहीं कर सकते, पर निरंतर याद करने की दिल कितनी है तुम्हारी। उस दिल से मैं मार्स देता हूँ, दिल से। मैं जानता हूँ तुम बिजी हो, तुम्हें घर संसार यज्ञ संसार संभालना है, देखना है, देह संसार भी देखना है, पर दिल कितनी है। मैं दिल से चलता हूँ। मैंने कहा 108 बार ड्रिल करूँ, नहीं होंगे तुमसे। कभी कभार मेरा कोई संकल्प नहीं कट करते, होंगे तो अच्छी बात है, चलो नहीं होंगे, पर दिल कितनी थी कि मुझे 108 करने हैं। दे दिए, अगर दिल है तो मैंने मार्स, दिल है तो मैंने कहा 20 मुरली पढ़ो, पर दिल कितनी है 20 मुरली पढ़ने की। समय नहीं मिला, छोड़ो, शरीर की कैपेसिटी नहीं है, छोड़ो, आत्मा नहीं झेल पा रही मुरली का बल, छोड़ो, पर कैपेसिटी ना होते हुए भी दिल कितनी है। मैंने कहा 50 किलो उठाना है, तुम उठा नहीं सकते मैं जानता हूं, पर दिल कितनी है। यह बाप दिल से चलता है, पुरुषार्थ नहीं देखता हो, वो सिर्फ दिल देखता है, क्योंकि दिल सच्ची होती है। कोई बच्चा कहता है मेरा ठीक होता ना तन तो मैं 20 मुरली जरूर करता, मेरा मन है ना चंचल नहीं होता ना तो कितना अच्छा होता, मैं योग बहुत करता, हर श्रीमत को पालन करता। अभी तूने दिल जब बताई तब उस घड़ी अवगुण भी बताया ना, मैंने निकाल दिया उसी क्षण निकाल दिया, क्योंकि तूने दिल बताई। और किस कारण तू नहीं कर पा रहा है, वो कारण को मैंने निवारण में कन्वर्ट कर दिया। मैं सिर्फ दिल से चलता हूँ, ध्यान में रखना। मैंने किसी बच्चे को कहा 56 भोग बनाओ, बच्चे ने कहा हाँ जी बाबा। वो बच्चा उमंग उत्साह से, आज 56 भोग बनाने हैं, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके चलना है, करना है। वो खड़ा रहेगा, पैर थके हैं, हाथ थके, व्यंजन बनाते बनाते, पर दिल है, नहीं बनाना ही है। 20 ही हुए, थक गया शरीर, 56 की दिल थी ना, मैंने दे दिए मार्स। मैं पुरुषार्थ से नहीं चलता हूं। तुम मुझे क्या दिखाओगे 10 मुरली की, क्या दिखाओगे मुझे 8 बार ड्रिल की, 108 बार ड्रिल की। मैं दिल से चलता हूं। कोई बच्चा कहता है बाबा मुझसे ये नहीं होता, बाबा कहते हर जाने बच्चे, बस दिल साफ कर दी, मैं राजी, बात खत्म हो गई। मैंने दे दिए उसके भी मार्स उसे, क्योंकि उसने सच्ची दिल बताई। इसीलिए कहते सच्ची दिल पे साहेब राजी, सच्चे दिल पे, करने की जरूरत नहीं है। इसी को बाप कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता, बस दिल साफ रखो, मैं सब दे दूंगा, सब का सब, पर दिल साफ हो। कहते ना दिल साफ तो मुराद हासिल, यही तो बात है। कोई बच्चा आता है यज्ञ में, ब्रह्म अनुसार कर्मों अनुसार पैर नहीं होते, कहता है मेरे पैर होते ना तो मैं झाड़ू लगाता यज्ञ में। दे दिए मैंने मार्स, लगाने की जरूरत नहीं तुझे। कोई गरीब बच्चा होता है, सोचता है मेरे पास पैसे होते ना तो सेंटर बनवाने के लिए, यज्ञ के लिए मैं धन लगाता, दे दिए मैंने मार्स। तुम्हें क्या लगता है मैं धन से मार्स देता हूँ? मैं सब दिल से देखता हूँ और दिल से ही देता हूँ। सब दिल की बात है यहाँ पर, स्थूल रूप की कोई बात नहीं है, सब दिल की बात। समझ है, चेक करो दिल कितनी होती है तुम्हारी, चेक करो बच्चे, दिल देखो जरा, दिल देखो। समझ है, समझदार बनो। किसी बच्चे को आवाज इतनी सुंदर नहीं मिली है ड्रामानुसार कर्मानुसार, बाप कहता है जरा गीत गाओ और बच्चा गा लेता है। जैसी भी आवाज है उसमें दिल से गाने की चेष्टा करता है, सुर वाले पर राजी नहीं। क्यों बच्चे? क्योंकि तेरे पास सुर है पर तूने दिल से नहीं गाया। और बेसुरे पर राजी हूं क्योंकि बेसुरे के पास सुर नहीं है पर दिल से गाया है, इसने दिल से नहीं गाया, सुर वाले ने। समझ है बच्चे, दिल की बात है ये ज्ञान सारा, दिल की बात। बाप बस दिल देखता है और कुछ भी नहीं। मैं पुरुषार्थ कभी नहीं देखता, ध्यान में रखना, सिर्फ दिल। कोई बच्चा राजी हो जाए ना, हाँ बाबा, बाप कहता है बैठ, हो गया, मैंने दे दिए मार्क्स। हाँ जी, कहा ना तूने, दे दिए मार्क्स, बस हो गया, बैठ जा। सिर्फ हाँ जी की बात है, दिल की बात है। कोई बच्चा कहता है ऐसे वैसे इतना उतना, उसे मैं करके भी मार्क्स नहीं देता, दिल नहीं है ना। कारण बताता है बहुत सारे, दिल देखो अपनी। दिल का खेल है ये, समझकर और संभल कर चलना। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है एक नंबर, पांच विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे इसकी संभाल करनी है। दो नंबर, सच्ची कमाई करनी और करानी है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान है याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। समझे? स्वभाव और संस्कार के और संबंध के व्यर्थ चक्कर तब तक समाप्त नहीं हो सकते जब तक संपूर्ण रूप से बुद्धि में क्षमा नहीं होती। क्षमा मना बाप, ध्यान में रखना। बुद्धि में अगर कुछ और है इसलिए बाप कहता है नो सेवा ओनली क्षमा। सेवा नहीं। नो संबंध, नो स्वभाव, नो संस्कार व्यर्थ वाले, नो सेवा। कैसे संजोग है ना, सभी शब्द स से है, स्वभाव संस्कार संबंध सेवा नो। स से जरा आगे क्षमा, श से बाप। ये स जरा खतरनाक है, इससे जरा दूर रहो। स इन बातों में, दुनियावी रूप से नहीं, ये चार शब्दों में स खतरनाक है। कौन से? संबंध, स्वभाव, संस्कार, सेवा। बाकी स तो प्योर वर्ड है, स से अनगिनत प्रकृति के पदार्थ हैं इन चार शब्दों में। बच्चे बस बाप बुद्धि में रखो, बाकी सब भूल जाओ। तुम क्या करते हो? सब बुद्धि में रखते हो और बाप को भूल जाते हो, सबसे उल्टा कर देते हो, सबसे उल्टा ड्रामा। और क्या कहे, क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं, ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स से सच्चा भी है, स से समा जाना भी है, तो ये गलत नहीं है। स से समान बनना भी है, अच्छा भी है। पर बच्चे जब श्रीमत पर चलोगे तभी तो समान बनोगे। बाप क्या कर रहा है? समान बनाने की चेष्टा कर रहा है। मेरे विचार माना मेरी श्रीमत है, मेरे विचार तुम्हारे संस्कार बने, तब तुम मेरे समान बनोगे। पर तुम राजी नहीं हो मेरे विचारों पर। विचार क्या है? श्रीमत है ना। तुम राजी नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ही विचार चलाने, चलाओ और रहो माया के सपूत बच्चे, पक्के बच्चे। और क्या कहूँ मैं? बाप समान बनना है तो श्रीमत को धारण करो। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हूँ। टोली खाओ और मौज में रहते रहते श्रीमत पर चलते चलते बाप समान बनो। खुशी में रहो कायम, बाप समान बनोगे जल्दी। जितना खुशी में रहेंगे उतना जल्दी बाप समान बनेंगे। एक ही गुण, खुशी। अच्छा, ओम शांति।
वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति।